एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर।
रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की वो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की वो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम।
एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर,
तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर।
तन तूफानी है लेकिन हस्ती अमृत की खान, साधना में पीले इसके प्याले, साधन जो ब्रह्म ज्ञान। नहीं नन्ही सी हो आशा नवयुग के अरमान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तूम। एक उफान भर तू पार कर ले हर मुश्किलों का समंदर, नवयुग के अरमान हो तुम। सुबह की साकार मुरली, शुद्ध आत्मा के लिए शुद्ध शरीर चाहिए, शुद्ध आत्मा के लिए शुद्ध शरीर, और उसकी तैयारी संगम पर करनी है। ये देह जितना जितना शुद्ध होता जाएगा उतना उतना एक हल्कापन आएगा, उस लाइट बॉडी का निर्माण अभी करना है। देह में रहते अशरीरीपन का अनुभव, कर्मातीत स्थिति का अनुभव, संपूर्ण स्थिति का अनुभव, संपूर्ण पवित्रता का अनुभव, अशरीरीपन, विदेही अवस्था, अव्यक्त स्थिति, चाहे कोई भी नाम दो, वो सारे अनुभव इसी तन में बैठकर करने हैं, और अभी करने, शरीर छोड़ने के बाद नहीं। और ये सारी प्राणिक यात्रा उसी लक्ष्य की ओर हमें ले जाती है। धीरे धीरे हम ये जानते हैं कि हमें चलाने वाला कौन है, क्या है। नवयुग के अरमान हो तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर, एक उफान, एक जोश, स्वयं स्वयं का ही टीचर बनना है। हमारे अतिरिक्त हमारा और कौन टीचर बन सकता है? एक परमात्मा परम टीचर है, उसके अलावा हम ही अपने टीचर हैं। हर एक को अपना मार्ग खुद प्रशस्त करना होगा, किसी से पूछकर हम जान नहीं सकते। संगीत के जगत में एक बहुत बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ मोजार्ट कभी हुआ था 18वीं शताब्दी। आपने देखा होगा सीडीज पर लिखा हुआ रहता है मोजार्ट। बहुत कम जिया, 40 साल भी नहीं, परंतु उसने जिस जिस संगीत की रचना की, वो ऐसे अद्भुत संगीत थे कि उसे द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एवर कहा जाता है। उससे बड़ा और कोई संगीतज्ञ कभी हुआ नहीं, मोजार्ट से बड़ा। बाकी भी होते रहे बाद में, परंतु मोजार्ट से किसी की तुलना नहीं है। किसी ने मोजार्ट से कभी पूछा कि आपने संगीत किससे सीखा? मोजार्ट ने कहा, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने स्वयं ही सीखा। उस नवयुवक ने पूछा मोजार्ट से, तो क्या मैं भी सीख सकता हूं जैसे आप सीखे? मोजार्ट ने कहा, ऐसा मैंने कभी किसी से नहीं पूछा था, इसलिए तुम शायद नहीं सीख पाओगे, क्योंकि तुम्हारे मन में प्रश्न है, डाउट है, तुम ढूंढ रहे हो। मैंने ये किसी से भी नहीं पूछा था, इसलिए तुम्हें शायद आवश्यकता पड़ेगी। पर उस व्यक्ति ने जिद की, जब तुम सीख सकते हो तो मैं क्यों नहीं सीख सकता, मुझे क्यों किसी की आवश्यकता है? मोजार्ट ने वही कहा, अगर ऐसा होता तो कब के सीख गए होते, तुम्हें प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ना ही मेरे पास आने की आवश्यकता पड़ती। स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग्स, इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। केवल अध्यात्म नहीं, बाकी क्षेत्रों में भी लोगों ने अपने आप ही पढ़ाई की, अपने आप ही जागरण आया। उनका कोई गुरु नहीं था, कोई शिक्षक नहीं था, कोई टीचर नहीं था, कोई ऐसा कोई फैसिलिटेटर नहीं था, कोई मॉडरेटर नहीं था, कोई गाइड नहीं था, कोई कोच नहीं था, कोई ट्यूटर नहीं था। ऑटो डिडैक्टिज्म कहा जाता है उसे इंग्लिश में, ऑटो डिडैक्टिज्म। खुद खुद के टीचर थे वो, खुद खुद ही पढ़े, खुद खुद का ही मार्ग प्रशस्त किया, किसी से कुछ पूछा नहीं। और ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण है इतिहास में, जिसे कहा जाता है स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग, अपने आप ही जागरण आ गया, किसी की कोई मदद नहीं ली, स्वयं ही स्वयं का मार्ग प्रशस्त किया। और ऐसे जो लोग हैं इतिहास में, वो शरीर के भान से ऊपर उठे हुए लोग थे। चाहे गणित के क्षेत्र में रामानुजन, संगीत के क्षेत्र में मोजार्ट, पेंटिंग के क्षेत्र में कितने सारे हैं माइकलएंजेलो, कितने सारे हैं। ऐसे हर क्षेत्र में लोग हैं कि जिनका कोई शिक्षक नहीं था, ऑटोडिडैक्टिज्म, खुद ही खुद जागृति आई। अध्यात्म के क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे हैं। और ये सब वो लोग हैं जो शरीर से ऊपर उठे हुए लोग हैं। ऐसे कवि है पर्सिविसी शैली, विलियम वर्ड्सवर्थ, कालिदास, कितने सारे लोग, तुलसीदास, भक्ति के क्षेत्र में मीरा, ये सब देहभान से ऊपर उठते हुए लोग हैं। और इन्होंने जो मार्ग चुना उसी में आगे निकल गए, चाहे भक्ति, चाहे अध्यात्म, चाहे पांडित्य, संगीत, कला, कुछ भी देह दुख का कारण है। सुबह की साकार मुरली, बीमार पड़ते हो तो क्या क्लास में नहीं आ सकते? पुरुषार्थ है इस शरीर को केवल स्वस्थ रखना नहीं, शरीर को दिव्य बना देना, एक ऐसा साधन बना देना कि इसमें रहते ही हमें अशरीरीपन का निरंतर अनुभव होता रहे। कोई स्त्री कभी ऐसा नहीं कहती रहती है कि मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं। कोई पुरुष कभी ऐसा नहीं बोलते रहता है कि मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं तो भूल ही गया था। क्यों? इतना गहराई में चला गया वो भाव कि मैं पुरुष हूं। उसी तरह ये भाव मैं आत्मा हूं अभी तक इतना गहरा नहीं हुआ है, इसलिए अभ्यास है। मैं आत्मा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। क्यों? क्योंकि शरीर से इतना गहरा तदात्म्य है, और आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला सबसे गहरी जो बात है वो है आहार, क्या हम खा रहे हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है। छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। अभी स्वराज्य अधिकारी नहीं बने तो कब बनेंगे? कोई दाग ना हो, यही दर्पण है। अगर तुम्हें अपना चित्र देखना है तो क्या बनोगे? हर जन्म की दुत्कार नहीं बहाने कोई उलाने, पुरुषार्थ का तूफान तुम। कौन हो तुम? पुरुषार्थ का तूफान। पुरुषार्थ का तूफान अर्थात रोक पाएगा कौन तुम? तुम्हें सिंह की हो संतान तुम, एक उफान भर तो पार कर ले हर मुश्किलों का समंदर। जिसने सोच ही लिया मुझे करना ही है, आगे बढ़ना ही है, फिर वो रुकता नहीं है। फूल जिसने उगाने की सौगंध ली, वो मगन हो के चलता रहे, चाहे धरती हो कितनी कठोर, हर घड़ी चलते हैं वो उजाले की ओर। ये मार्ग अंधकार से उजाले की ओर जाने का है, कम प्रकाश से ज्यादा प्रकाश की ओर जाने का है। तो अभी तक इस प्राणी की यात्रा में हमने ढेर सारी चीजें देखी है, और आज का 69th वर्डिन, बहुत सारे साधन देखे। सुबह की साकार मुरली बाप तुम्हें नए नए तरीकों से समझाते हैं ताकि बुद्धि में बैठे, ज्ञान एक ही है पर नए नए तरीके। तो हमने चालू किया था 13 नवंबर 2022 को, और इतने दिनों में कई सारी बातें ली, कई सारे साधन लिए ताकि हम प्राणिक यात्रा में और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सके। तो एक था प्राणिक संबंध, फिर था मान्यता है प्राणिक स्वमान, फिर सेवा ही ऊर्जा का स्रोत कैसे बन जाए, हमारे एक्शंस ही हमारा भोजन बन जाए। एक्शंस आर द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। कर्म इतना ऊंचा, इतना महान कर दिया कि वो कर्म ही हमें हमारा पोषण कर रहा है। अब कुछ और लेने की इच्छा नहीं है, इतने श्रेष्ठ कर्म है। फिर प्राणिक क्रियाएं ली, फिर आध्यात्मिक प्रकंपन को कैसे बढ़ाए दो भागों में लिया। प्राणिक मेडिटेशन, मेडिटेशन ही भोजन कैसे बन जाए। प्राणिक सुविचार भाग एक भाग दो, प्राणिक प्रेम भाग एक भाग दो भाग तीन, प्राणिक प्रवाह सन गेजिंग लिया, प्राणिक निश्चय, प्राणिक ब्रह्मा भोजन एक दो तीन, प्राणिक भाव और भावनाएं, किस तरह के भाव हो, किस तरह के इमोशंस हो, क्योंकि निगेटिव इमोशंस आते ही हम क्या करते हैं, उसको कवर करने के लिए भोजन करते हैं, और थोड़े देर के लिए वो शांत हो जाते हैं, परंतु वो केवल दब जाते हैं, खत्म नहीं होते। प्राणिक पवित्रता, प्राणिक संजीवनी, जब प्राण अन्न से निकले, इसके दो भाग लिए थे, एक भाग अभी बाकी है, फिर ये ट्रांजिशन कैसे करना है, जो कुछ हम ले रहे हैं उससे जो लेना चाहिए उसमें कैसे आना है, फिर साधना में विघ्न कौन कौन से आते हैं, फिर 14 प्रकार के अन्न दोष देखे, फिर प्राणिक चिकित्सा 10 प्रकार की कैसे कैसे की जाए, प्राणिक समय के बारे में देखा, प्राणिक संकल्प के बारे में देखा, प्राणिक पिकनिक के बारे में देखा और की भी, प्राणिक मुरली, मुरली को प्राणिक कैसे बनाए, आगे आगे आ जाएंगे। फिर प्राणिक संस्कारों की चर्चा की थी 2 भागों में, भाग 1 भाग 2। फिर प्राणिक कायांतरण, इस शरीर का ही रूपांतरण कैसे करना है उसकी चर्चा हुई थी। फिर प्राणिक साहस, फिर प्राणिक क्रेविंग, जिसमें आज के बहुत सारे प्रश्न उससे संबंधित है, और जो भी ये आज इसलिए गिना रहे क्योंकि प्रश्न पूछने वाले भूल गए हैं कि ये सारी चर्चा हो चुकी है, उन्हें केवल इंटरेस्ट है प्रश्न पूछने में, क्योंकि प्रश्न पूछने में बहुत उत्सुकता और जिज्ञासा होती है, और उसमें एक कारण ये भी होता है कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ तो हम भी कुछ कम नहीं है। व्यक्ति प्रश्न इसलिए भी पूछता है कि दूसरों को पता चले कि हम भी प्रश्न पूछ रहे हैं, बाकी उन्हें उत्तरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है केवल पूछने में। दादी आती थी, दादी पूछती थी पूछो किसको क्या पूछना है, तो हमेशा कुछ कुछ तो पूछते ही थे, दादी बाप समान कैसे बने, उनको इसके उत्तर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रश्न पूछने में इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद में हमने देखा था प्राणिक मनोरंजन कैसे किए करें, फिर देखा था 3 अनोखी आदतें, 3 नई आदतें, थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा होगा। फिर प्राणिक जीवन के 3 चरण, प्राणिक इनिशिएशन, प्राणिक एडेप्टेशन और प्राणिक लास्ट में मैनिफेस्टेशन, ये 3 चरण है। ये जो इनिशिएशन है ये 21 दिन हम लेंगे, तो अभी ये जो 20 दिन प्रश्न उत्तर चलेंगे ये तैयारी है अगले 21 दिनों की, और 21 दिनों के बाद सब अपने अपने मार्ग से अकेले अकेले चलेंगे, भट्टी पूरी हो जाएंगी, ऐसी वाली क्लासेस फिर से रिपीट नहीं होगी। तो ये 20 दिन तैयारी, 21 दिन का वो इनिशिएशन होगा, और उसके बाद अपने अपने मार्ग पर चलना है आगे। फिर उसके बाद में प्राणिक जीवन के 3 चरण, फिर प्राणिक जीवन करना ही क्यों है, इसकी कई सारे 18 कारण देखे थे, फिर एक सोच है नहीं, फिर प्राणिक वनवाह। उसके बाद में 18 दिन तक, जनवरी के 1 से 18 तारीख तक हमने जो रोज के जो पुरुषार्थ है वो देखे थे, और कल हमने चालू किया था प्रश्न उत्तर। तो कल हमने 4-5 प्रश्न लिए थे, आज अगला प्रश्न। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, मेरा एक प्रश्न है, मैं आत्मा बहुत कम खाती हूँ, जैसे 2 फुलके सुबह का खाना, नाश्ता नहीं लेती हूँ, रात को 2 फुलके, वैसे भूख नहीं लगती पर शरीर को चलाने के लिए, जैसे भाई जी कहते हैं तो शरीर को चलाने के लिए भट्टी के बाद कैसा रूटीन रखना चाहिए। हम घर में रहते हैं परिवार के साथ, प्रश्न है ये भट्टी होने के बाद क्या करना है, तो बाद में देखेंगे। फिर भी फास्टिंग में और प्राणिक लिविंग में अंतर है। फास्टिंग का शुरुआत है और एंड है। रॉ फूड लोग करते हैं, उसका एक लक्ष्य होता है वजन घटाना है या कोई बीमारी से मुक्त होना है। फ्रूट्स पर लोग जाते हैं, फ्रूटेरियन डाइट, उसका भी एक लक्ष्य होता है कि वजन बढ़ गया है, वजन कम करना है, या शुगर बढ़ गई है, या फिर बीपी बढ़ गया है, या कोई बीमारी आई है, या डॉक्टर ने कहा है, या फ्रूट खाना अच्छा है, वगैरह वगैरह, ये कई सारे कारण होते हैं। या कोई नॉन वेज में होता है तो वो वेजिटेरियन में आता है, वेजिटेरियन से कभी कभी वीगन में आते हैं, ये अलग अलग फ्रूट्स डाइट की कैटेगरी है। वीगन अर्थात जो एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेते, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें या जो भी पशुओं से आता है वो नहीं लेते, उन्हें वीगन कहा जाता है। ये सब अलग अलग लेते हैं, पर जो भी ये लोग करते हैं उसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। यहाँ प्राणिक लिविंग अर्थात जीवन शैली, और इसको दीर्घकालीन बनाना है जो भी हम करेंगे। फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु उसमें बहुत क्विक डिटॉक्स होता है, एकदम अशरीरीपन अवस्था का अनुभव होता है, बहुत हाई लेवल पर एनर्जी चली जाती है, बहुत क्विक डिटॉक्स होता है उसमें, परंतु व्यक्ति वापस नीचे आ जाता है। आज सुबह की साकार मुरली, किसी किसी को नशा चढ़ता है एकदम ऊपर, किसी किसी को कम चढ़ता है, दीर्घकाल तक नहीं चलता है वो। ये हमारी जो यात्रा है वो सस्टेनेबल हो, लंबा समय तक चले, बहुत कंसिस्टेंसी और धीरे धीरे जीवन शैली बन जाए। इसलिए हमने कल कहा था कि इसमें फास्टिंग नहीं करना है, इसमें ड्राई और वाटर फास्ट ये नहीं करना है। रादर ब्रिदारियन की यात्रा में फास्टिंग शब्द का ही प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि फास्टिंग शब्द के साथ थोड़ा सा उपवास, निराहार, निर्जला, इन सभी शब्दों के साथ एक सप्रेशन का भाव है, एक जैसे फोर्स कर रहे हैं। है बहुत अच्छा, परंतु एक सप्रेशन का भाव है। इसलिए इस यात्रा में यूज किया जाता है शब्द ड्राई डेज, वाटर डेज, लिक्विड डेज, जूस डेज, प्राणा डेज, इस तरह के शब्द। तो प्रश्न है कि भट्टी पूरी हो जाएगी 28 फरवरी को, उसके बाद हम क्या करें? भोजन एक आदत है, हम जैसे अपने आप को आदत डालेंगे वैसे उसको आदत पड़ेगी। यदि हमें लगता है अभी हम जो कुछ ले रहे हैं उससे हम एकदम ठीक है और स्वस्थ है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जो चल रहा है वो चलने दो। यदि हमें लगता है कि शरीर में भारीपन है और अशरीरी अवस्था हो नहीं पाती, तो ज़रूर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि राजयोग के लिए एक क्राइटेरिया है क्लीन स्टमक। क्लीन स्टमक के बिना राजयोग नहीं हो सकता। स्वच्छ पेट, स्वच्छ हो ऊपर से, ये माउथ से लेकर एनस तक का जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है सभी दुखों का कारण है। इसमें राक्षस बैठा हुआ है और खाते ही ये जागता है। सुबह की मुरली, बीमार पड़ेंगे तो क्लास में नहीं आ सकते, शरीर दुख का कारण है। पिछले 3 दिनों से 3 हार्ट अटैक के पेशेंट आए हमारे पास, कल एक आए, उसके पहले एक आया, उसके पहले एक आया, और ये जो तीनों ही पेशेंट है, इनको किसी भी तरह का कोई भी रोग नहीं है, पहले से कोई भी व्यसन नहीं है, उनके परिवार में किसी को भी कोई बीमारी नहीं है। पहले दिन पेशेंट आया हार्ट अटैक, कोई हिस्ट्री नहीं, परसों आया उसको भी कोई, कल तो जो भाई आया वो बीके है, उनके घर में किसी को कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं। लगातार 3 दिन से 3 हार्ट अटैक के पेशेंट, कल शाम में आए, वो भी परसों आए, वो भी उसके पहले आए। कहां से आए हार्ट अटैक? एक दिन में तो नहीं आएगा, जरूर कुछ तो गलत कर रहे हैं। ये ना बाहर से कुछ खाते हैं, भोग लगाते हैं, स्वस्थ है और उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी ना। तो बीमारियां जब आ जाती है शरीर में, तो सारा पुरुषार्थ ठप हो जाता है, दिनचर्या बदल जाती है, दवाइयां, हॉस्पिटल, उनके साइड इफेक्ट्स, बहुत सारी चीजें हैं उससे जुड़ी हुई। हमें एक ऐसा शरीर चाहिए जो स्वस्थ हो, और केवल स्वस्थ होना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, उससे भी और आगे। आज का स्लोगन है क्या? आत्मिक शक्ति। बाबा पर स्वस्थ रहने की परिभाषा फिटनेस की परिभाषा नहीं कह रहे, स्वस्थ आत्मा में स्थित। और केवल स्वस्थ है तो अध्यात्म में उन्नति होगी ऐसा भी नहीं है, वो एक साधन है, एक टूल है। वो अगर हमारे पास हो तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, पर अशरीरी अवस्था स्वस्थ शरीर में ही इतनी कठिन है, तो बीमार शरीर में कितना कठिन हो जाता है। जब शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर अस्वस्थ है, लूज मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग्स हो रहे हैं, अशरीरी बन के दिखाओ, 104 टेम्परेचर है, अशरीरी भाव करके दिखाओ, शरीर टूट रहा है, तड़प रहे है, स्टोन, किडनी स्टोन, ये स्टोन, वो स्टोन, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ है ही ऐसा। ऊपर से जो स्वस्थ और फिट और हैंडसम दिखने वाले, उनके जब रिपोर्ट्स निकलते हैं तो कुछ के कुछ निकलता है। अभी अभी हमारे पास एक जिम ट्रेनर आया था, जिम ट्रेनर जो दूसरों को जिम सिखाता है, एकदम ऊपर से बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर, ब्लड प्रेशर 230-130, रिपोर्ट्स कराए कोलेस्ट्रॉल वेरी हाई, दिन में 5 बार तो नॉनवेज खाता है, शुगर बॉर्डर पे एक भी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं। जो ऊपर से दिखते हैं वैसा अंदर से होता नहीं है। शरीर कितना शुद्ध है भीतर से, और हमारा लक्ष्य तो अध्यात्म है। और शरीर इस शरीर से ऊपर निकल जाना है, पहली ये तो बहुत ही छोटी स्टेप है शारीरिक स्वास्थ्य पर, बहुत महत्वपूर्ण। इसके आगे फिर आगे सब कुछ चालू होता है धीरे 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 धीरे। योगी तो धीरे धीरे नींद को जीतता है, भूख प्यास तापमान सबसे परे निकलते जाता है। तो भट्टी का रूटीन क्या होगा? तो सबसे पहला तो ये है कि ये नहीं समझो कि ये खत्म हो गया तो खत्म। इसको रूटीन, इसको जीवन शैली बनाना है। इसलिए कहा कि जो भी हम करें उसको एक तो एक्सपेरिमेंट और अनुभव के तौर पर करें, और धीरे धीरे अगर वो ठीक लगा तो उसमें आगे बढ़ना है। फिर जैसे यहाँ दो डिवीजन बताए हमने, फूड के कितने सारे डिवीजन किए हैं, एक तो सॉलिड फूड, एक तो लिक्विड रॉ फूड और कुक्ड फूड का डिवीजन, एक वीगन और वेजिटेरियन, वेजिटेरियन होते हैं और वीगन वाले होते हैं, दो डिविजन्स। कितने सारे लो वाइब्रेशन फूड, हाई वाइब्रेशन फूड, जो खाते ही भारीपन आ जाता है, एक अनाज एक नॉन अनाज, ये कितने सारे डिविजन्स किए। उसी तरह जो ये प्राणिक लिविंग है और जो लोग ये करना चाहते हैं, इसकी विदेश में रिट्रीट्स होती है 21-21 दिनों की, 9 दिनों की, 10 दिनों की, 12 दिनों की, 8 दिनों की, अलग अलग प्रकार की रिट्रीट्स होते हैं। और इन सभी रिट्रीट्स में अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, कोई नॉनवेज खाने वाले, कोई स्मोकिंग करने वाले, उन सबको एक्सप्लोर करना है कि ये है क्या, व्हाट इज ब्रदरियनिज्म। और इसमें जो आने वाले लोग हैं और कई सालों से आ रहे हैं, उन सब के कम से कम 1000 लोगों के जो अनुभव है, उस आधार पर ये निचोड़ निकाला गया कि सबसे पावरफुल टूल जो है इस यात्रा तक पहुंचने का, टूल हमने इतने सारे देखे, सन गेजिंग है, बेयरफुट वॉक है, प्रकृति से जुड़ना है, ये एक 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 अलग अलग टूल्स है, अलग अलग संसाधन है, पर जो सबसे पावरफुल टूल है वो रॉ फूड नहीं है। जो रॉ फूड पे है, जरूरी नहीं है कि वो प्राणिक लिविंग में आगे बढ़ जाएंगे, वो उसी में स्टक है कि अपनी मान्यताओं के अनुसार, वो बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते। रॉ मतलब रॉ ही होना चाहिए, फिर कुछ भी हो जाए। दूसरे वीगन बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड, वो इतना फिक्स हो गया है मान्यता। तीसरे फ्रूट वाले, ये इनमें से कोई भी प्राणिक लिविंग तक जरूरी नहीं है पहुंच पाएगा। एक ही टूल है जो सारी स्टडीज, 1000 लोगों की जो स्टडीज देखे गए, अनुभव उन्होंने जो अनुभव सुना है, उसमें से एक ही ऐसा टूल है जो बताया गया जिससे प्राणिक लिविंग स्टेज 4 तक, कैटेगरी 4 तक पहुंची जा सकता है, या कैटेगरी 3 तक आसानी से आ सकता है, और वो टूल है लिक्विड लाइफस्टाइल, लिक्विड डाइट। नीचे है रॉ फूड वाले, फिर फ्रूट वाले, फ्रूटेरियंस रॉ फ्रूट्स, स्प्राउटेरियंस स्प्राउट खाने वाले, जूसेरियन जूस पीने वाले, रॉ फूडिस्ट कच्चा खाने वाले, वीगन पशुओं का कुछ भी न लेने वाले, वेजिटेरियन। तो ये सारों के बीच में और लेवल 4 के बीच में एक लिंक है, और वो है लिक्विड डाइट की। लिक्विड डाइट एक ऐसा डाइट है कि जो हमें बहुत सारी एडिक्शन से मुक्त करता है। सॉलिड फूड लेते ही अटैचमेंट आती है, लिक्विड फूड लेते ही डिटैचमेंट आती है। सॉलिड फूड हमारे शरीर में लंबा समय टिकता है और पॉइजन्स बनता है, टॉक्सिन्स बनते हैं, बीमारियों को जन्म देता है। लिक्विड ज़्यादा समय नहीं टिकता, परंतु लिक्विड डाइट का अर्थ जूस डाइट नहीं है, रसाहार नहीं है, जो हमने कल भी देखा था 4 कैटेगरीज है उसकी। लोग सीधा रसाहार पर जाते हैं और सबसे पहला परिणाम क्या हो जाता है, शरीर से एकदम स्वस्थ हो जाते हैं, निरोगी हो जाते हैं, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करते हैं, ऐसा लगता है नीचे आओ ही नहीं, निर्विकारिकता का अनुभव होता है, संपूर्ण प्यूरिटी का अनुभव होता है, परंतु वजन घट जाता है, सीधा 20 किलो, सीधा 10 किलो कम, पहले ही पतले दुबले थे, और ये एक बाधा बन जाती है फिर, क्योंकि फिर घर वाले, मित्र पर संबंधी, ये सारे दुश्मन बन जाते हैं, ये क्या कर दिया तुमने। 4P, पहला पी पति पत्नी पड़ोसी और परिवार वाले, ये जो पी है ये आ जाते हैं बीच में, और फिर रोकना पड़ता है, और फिर वापस कुक्ड पर आ जाते हैं, यात्रा बंद हो जाती है। फिर तो छोड़ते ही, इसको कहते एक बार कर लिया हमने, अभी नहीं करेंगे। अनुभव हमको आ गया, कैटेगरी टू तक पहुंच गए थे, थ्री तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि बाधा कौन सी हो गई, वेट लॉस की। इसलिए फिर इसके बारे में एक निगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो गया, यहां रुक जाते फिर। इसलिए कहा इस यात्रा में तीन क्राइटेरिया है, वेट स्टेबिलाइजेशन, एनर्जी स्टेबिलाइजेशन, स्लीप स्टेबिलाइजेशन। इसलिए यह यात्रा रसाहार की यात्रा नहीं है, कच्चे भोजन की यात्रा नहीं है। इसलिए भट्टी होने के बाद में भी अभी हम जो कुछ करें उस पर एक्सपेरिमेंट करना है, पूरा जीवन एक एक्सपेरिमेंट हो कि आज मैं ये करके देखता हूं क्या होता है। तो हम कह रहे थे कि लिक्विड डाइट जो है वो सबसे पावरफुल टूल है, जो लिक्विड पे जाता है उसे फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना सन गेजिंग करने की, ना प्रकृति से जुड़ने की, कुछ नहीं करो, केवल लिक्विड डाइट। क्योंकि लिक्विडिटी, हमारा शरीर अभी बहुत हेवी क्यों है, सॉलिड की वजह से। हम जो सॉलिड खाते हैं वो डाइजेशन, हमारी ऊर्जा डाइजेशन में चली जाती है। लिक्विड लिक्विड लिक्विड्स, लिक्विड्स जितना लेंगे शरीर में लिक्विडिटी का जन्म होता है, सेल्स में लिक्विडिटी होती है, एक सेल दूसरा सेल लिक्विड लिक्विड, क्योंकि लिक्विडिटी मतलब यहाँ पर हमको डाइजेशन ज़्यादा नहीं होता है, उसका भी थोड़ा तो होता है पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और शरीर एकदम हल्का ही रहता है। और वेट लॉस क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हम लिक्विड ले रहे, लिक्विड विथ कैलोरीज, पानी नहीं पीना है, केवल पानी पर चले जाते हैं लोग 21-21 दिन। और ये सारे एक्सपेरिमेंट हमने खुद किए, 21 डेज लेमन वाटर और हनी, बहुत पहले हमें याद है एक बार नीचे शांतिवन में मुरली सुनी स्वराज्य अधिकारी 2004 में, इतना नशा चढ़ गया कि अब हमको करना ही है, किया और फिर सीधा ब्रह्मा भोजन था, वो देखकर सब खत्म हो गया। मैंने कहा छोड़ो अब देखेंगे इसको बाद में, पीस पार्क में पार्टी थी, सब खत्म, क्योंकि तब ज्ञान कुछ भी नहीं था, केवल जोश जोश में कर लिया और छोड़ दिया, कहीं लिटरेचर पढ़ा नहीं था, कुछ पता नहीं था इसके बारे में। ऐसा भी एक जीवन है, अभी भी कितने सालों से कर रहे, पर ये बात ऐसा हो सकता है, इसकी ऐसी विधि है, ये नहीं पता था कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो भट्टी पूरी भी हो जाए या चालू भी रहे, जो भी करना है उसको क्या करना है, जीवन शैली बनाना है, और एकदम नहीं आना है लिक्विड पर। अगर तीन बार सॉलिड फूड खा रहे तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एक बार लिक्विड कर दो। और ब्रेकफास्ट को लिक्विड करना बहुत आसान है, लिक्विड में चार बातें आती है, कल भी सुनाया था, जूसेस, तीन प्रकार के जूसेस है, फ्रूट्स के जूसेस, वेजिटेबल्स के जूसेस या ग्रीन जूस, जो लेना है तीनों में से लो, लिक्विड विथ कैलोरीज, पानी नहीं, लिक्विड विथ कैलोरीज, पानी अगर चाहिए तो उसमें थोड़ा हनी डाल दो या लेमन डाल दो, ये एक। दूसरा स्मूदीज, सारे फ्रूट्स की स्मूदीज बनाओ, अलग अलग प्रकार की स्मूदीज बनाई जा सकती है, वो आप सीख सकते हैं, खुद ट्रेनिंग दो खुद को, बहुत आसान है वो। फिर उसके बाद में है तीसरा वाटर, कोकोनट वाटर, लेमन टी, हनी, ये सारे जो है हर्बल टी, हुंजा टी वगैरह वगैरह, क्लियर लिक्विड्स वो। और चौथा है सूप, जितना हो सके दिन भर में अगर हो सके तो शुगर, और रात में सॉल्ट, सॉल्ट का और शुगर का भी बैलेंस, क्योंकि इससे छूटना इतना आसान नहीं है। इसलिए जो एडिक्शन, जो व्यक्ति 40 साल से दारू पी रहा है और उसको कहो कि दारू बंद, उसकी क्या हालत होती है, उसी दिन एडमिट हो जाता है, ऐसे ऐसे ट्रेमर्स आने लगते हैं उसको, क्योंकि दारू उसके शरीर की फिजियोलॉजिकल नीड बन गई है। उसी तरह भोजन भी सेम है, हमें एडिक्शन हो गया है उसका। अगर एक दिन कहा कि एक दिन तुम जो तीन बार सॉलिड फूड खाता है और चार बार टोली खाता है, उसको सबसे पहले टोली थोड़ी कम करो, चार बार टोली खाते अभी तीन बार करो, धीरे धीरे उसकी मात्रा बाद में, पहले तो तीन बार करो या थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ, जो भी है, पहले तो टोली, फिर उसके बाद में उसका बिल्कुल भरपेट भोजन जब तक नहीं करते, सुबह नाश्ता थेपला होना चाहिए, पोहा होना चाहिए, वो कड़ी होनी चाहिए, उसके बाद में ब्रेड और सैंडविच और फिर दूध और चाय, इतना करने के बाद ही फिर सेवा में जा सकते हैं, तब तक मजा ही नहीं आता है। और हेवी होना चाहिए, क्योंकि आज सेवा ज्यादा है, आज पता नहीं दोपहर का भोजन का टाइम नहीं है, तो और ठूस के। तो सबसे पहले धीरे धीरे परिवर्तन करना है, तीन बार अगर सॉलिड ले रहे तो एक बार लिक्विड कर दो, और जो दो बार सॉलिड ले रहे हैं तो वो एक बार सॉलिड कर दो, रात का भी लिक्विड कर दो। लिक्विड में सबसे अच्छा है सूप। अच्छा, लिक्विड में भी तीन प्रकार है, एक है थिन लिक्विड, एक है मीडियम लिक्विड, एक है थिक लिक्विड। थिन लेंगे तो ज्यादा भूख लगेगी, इसलिए क्या करना है, कंसिस्टेंसी, प्ले विथ लिक्विड्स, लिक्विड्स के साथ खेलना है। अब तक सॉलिड के साथ खेलते थे, अब लिक्विड के साथ खेलो। अब तक सॉलिड की रेसिपीज बनाते थे, अब लिक्विड की रेसिपीज बनाओ। कभी थिक कभी थिन, कभी सॉल्टी कभी शुगरी, प्ले विद देम। थिक थिक करो उसको, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा करेंगे तो पेट को आदेश संदेश जाएगा, हाँ भाई मुझे मिला है, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। नहीं तो पेट कहते हैं मेरा कुछ करो, क्या डाल रहे हो सुबह से, जूस डाल रहे हो खाली, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। तो धीरे धीरे। अगला प्रश्न, भाई जी मैं जैसे ही रसाहार पे जाता हूँ कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्या करें? कब्जी, ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल डिसऑर्डर है, सार्वजनिक, ये विश्वभौमिक बीमारी है, सार्वभौमिक कॉन्स्टिपेशन, कब्जी। सबसे पहला तो कब्जी का मेन जो एक कारण है वो है सॉलिड फूड। धीरे धीरे लिक्विड्स पर में प्रवेश करना है, और धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट है धीरज, पेशेंस। यहाँ हम आपको मेडिकल की ट्रीटमेंट नहीं बताएंगे, उसके पास ढेर सारी दवाइयाँ है हमारे पास, वो हम दे सकते हैं। डॉक्टर्स के पास बहुत सारी दवाइयाँ होती है, और लोग डॉक्टर्स की दवाई पर विश्वास नहीं करते तो अपने कमरे में इतने चूर्ण भर के रखते हैं, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसका वो अलमारी निकालो, ढेर सारे चूर्ण निकलते अलग अलग प्रकार के, सब जमा करके रखे थे, इधर के बाबा के उधर के बाबा के। हर व्यक्ति अपने हिसाब से कोशिश तो करता ही है खुद को ठीक करने का, और एक भी प्रयत्न नहीं छोड़ता है इस बात में, ये सबसे प्राइवेट बात है। कुछ ना कुछ तो करता ही है। तो यहाँ प्रश्न है, जब रसाहार पर जाते हैं, सबसे पहले तो सीधा रसाहार पे जाना ही नहीं है। रसाहार अर्थात जूसेस, फ्रूट का जूस। रसाहार की वास्तविक परिभाषा वो भी नहीं है, केला, केले का, केले की स्मूदी बनती है। रसाहार अर्थात निचोड़ा और रस निकला, संतरा मौसम्बी, ये जब इस पे रहते हैं तो उसे रसाहार कहा जाता है, ये रसाहार है। हाँ, तो क्या किया जाए, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, जैसे त्रिफला वगैरह है, दिस इज गुड, ये इस यात्रा में इसका प्रयोग किया जा सकता है। एक कई लोग एनिमा का प्रयोग करते हैं, तो कुछ समय एनिमा ले सकते हैं। एनिमा में भी हो सके तो प्लेन वाटर सिंपल, नहीं तो बहुत सारे ढेर प्रकार के एनिमा, एनिमा पर किताबें लिखी गई है, कॉफी एनिमा, ये एनिमा, वो एनिमा, एक है एनिमा। तीसरा, जितना हो सके वेट एंड वॉच, जो कहा ना पेशेंस, उसमें ऐसी चीजें इंक्लूड करो कि धीरे धीरे कारण को ढूंढो, कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो क्यों हुआ है, और फिर उसका उत्तर मिलेगा। सीधा दवाइयां तो बहुत है, इतने सारे सिरप है मेडिकल में, एलोपैथी में बात मत पूछो, नई नई दवाइयां रोज आती रहती है, ये लो तो उससे वो हो जाएगा, वो लो तो उससे हो जाएगा। जितने भी बूढ़े लोग आते हैं ना, उनकी एक ही कंप्लेंट होती है, पेट वाली, पेट ही साफ नहीं होता है बस। तो क्या किया जाए, पेशेंस, धीरज, और जैसे कहा लिक्विड यात्रा पर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, धीरे 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 लिक्विड लिक्विड लिक्विड्स, लिक्विड को लाइफस्टाइल बनाना है। तो ये जो इतनी सारी जो समस्या है ये अपने आप ही चली जाएगी, हमें किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये क्या करूँ, वो क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ, वैसा क्या करूँ। खुद ही प्ले प्ले विथ लिक्विड्स, ग्रीन जूसेस चालू करो, बहुत अच्छा ये रेचक है, आप लड़ा लो उसमें। ग्रीन जूसेस जो होते हैं, ग्रीन जूस अर्थात हरी पत्तियों का जूस, उसमें लौकी खीरा बेस बना सकते हैं, या खाली लौकी या ही खीरा, और उसमें सारी पत्तियां डालो जो जिस दिन अवेलेबल है, पालक, मेथी, पुदीना, जो भी है, धनिया, जो भी है सब डाल दो। एनिमा जो है वो बड़ी आंतों की सफाई करता है, और ग्रीन जूस जो है वो छोटी आंतों की सफाई करता है। और जितना उसमें आंवला अगर डालोगे तो वो बहुत फास्ट सफाई करेगा। तो ये बहुत सारी मेथड्स है, करेले का जूस है, बहुत ज़्यादा मतलब दुख देने की ज़रूरत नहीं है खुद को। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं संसार में, आप ढूंढ सकते हो, ये कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट की क्लास नहीं है, ये अध्यात्म के में उन्नति की क्लास है, इसलिए उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि कॉन्स्टिपेशन का क्या करें। केवल हम इतना ही कह रहे हैं, पेशेंस, धैर्य, धीरे 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 ये सारी छोटी छोटी बहुत सारे डिटॉक्स सिम्टम्स जो है, क्योंकि शरीर में आतों में जन्म जन्म का सब कुछ भरा पड़ा है, इन्फॉर्मेशन है उसमें, वो कैसे निकलेंगी, एक दिन से नहीं निकलेगी, उसमें पॉकेट्स होते हैं छोटे छोटे छोटे। जो लोग टोटल लेवल 4 ब्रदेरियन है, ना खाना ना पीना, उनको भी थोड़ा थोड़ा स्टूल आते रहता है, कहाँ से, जो बचपन से खाया हुआ है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने लंबे फास्टिंग करते हैं, ड्राई फास्ट, निर्जला, 15 दिन का निर्जला, 12वें दिन तक कुछ कुछ आते रहता है, कहाँ से, क्योंकि आत जो है ना वो बहुत मिस्टीरियस है, उसमें पॉकेट्स होते हैं, 71 पॉइंट्स होते हैं ऐसा कहते हैं, वो सब भरा रहता है, वो निकलते रहता है, निकलते रहता है। इसके लिए डिटॉक्स प्रोसेस एक दिन की प्रोसेस नहीं है, निरंतर है, हमारा शरीर शुद्ध होते जाए धीरे 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 धीरे। तो कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, अगर है तो 1 ग्रीन जूस, 2 एनिमा, 3 त्रिफला, आयुर्वेदिक कुछ ये होते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु बेस्ट है कुछ ना करो, अपने आप ही ठीक होने दो उसको, ये सबसे पहला। उसके बाद में ओम शांति भाई जी, रसाहार में जाने से वेट कम होता है, ये एक तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, ये इंग्लिश जो होती है ना बड़ी मुश्किल होती है, 67 वेट था, 50 हो गया है, भूख ज़्यादा नहीं लगती है, खाने के भी से भी मैं आत्मा क्या एक बाबा की बच्ची हूँ, मुझ आत्मा की हालत देखकर कोई बाबा का बनना नहीं चाहता। बाबा मेरे कैसे वेट बढ़ेगा, ओनली फ्रूट्स पर रहने के बाद एक टाइम चालू रखा है, सन गेजिंग करते हूँ। बहुत कुछ लिखा है, कहने का भाव इतना ही है कि वेट कैसे बढ़ाए उसकी विधि बता रहे हैं। तो वेट बढ़ाना है लिक्विड विद कैलोरीज से, लेट कैसे, वैसे कैसे बढ़ाएंगे, सीधा कुक्ड पे जाकर नहीं, अगर रॉ पर है तो रॉ पर ही रहो, परंतु उसी में ही वेट बढ़ाया जा सकता है लिक्विड पर ही। कैसे कैसे, फर्स्ट क्या क्या देंगे उसी में थोड़ा सा बढ़ाओ, फर्स्ट खजूर, डेट्स का सिरप बनाओ वो इंक्लूड करो, 1 नारियल होता है ना उससे वेट बढ़ता है, 2 तीसरा कच्ची घानी का तेल ऊपर से डालो, अगर कुछ स्मूदी बनाते हो, सूप बनाते हो, ऊपर से तेल डाल दो, उसको गर्म करने की आवश्यकता नहीं। फिर सेंगदाने होते, उसके अलग अलग रेसिपीज बना सकते हो, उन सबको लिक्विड में कन्वर्ट करते जाओ। उसके बाद में पीनट बटर खुद ही घर पे बना सकते हैं, उससे वेट बढ़ता है थोड़ा थोड़ा, और गुड़, सबसे बेस्ट है आलू या शकरकंदी, स्वीट पोटैटोज का उपयोग, क्योंकि पूरा 100% हम अगर चले जाए तो सबसे बड़ी जो बाधा आती है वो है, 67 वेट था सीधा 17 किलो कम हो गया, और अंदर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, अशरीरी अनुभव हो रहा है, परंतु मुझ आत्मा की ये हालत देखकर कोई बाबा का बनना ही नहीं चाहता है, ये हालत हो गई है, क्योंकि ज्ञान तो बहुत अच्छा है, तुमको बीमारी भी बहुत अच्छी कोई नहीं है, पर तुम्हारे जैसा दिखना नहीं है हमको, ये हमारी जो ब्यूटी है ना, वी वॉन्ट टू प्रिजर्व दैट, ये ऐसा नहीं दिखना है, भले बीमार पड़े तो चलेगा पर ऐसा नहीं दिखना है। इसलिए और क्या कर सकते हैं वेट बढ़ाने के लिए, सबसे बेस्ट है पोहा, भी एक चीज़ है कच्चा पोहा, उसका प्रयोग किया जा सकता है, और पाउडर्स, बहुत सारी पाउडर्स अवेलेबल है, वो उनका प्रयोग किया, पोहा, ये पोटैटो पाउडर्स भी आती है, टमाटो पाउडर्स आती है, बहुत सारी पाउडर्स अवेलेबल है जो सूप में डाली जा सकती है, सब सब्जियों को मिलाओ, उसको बॉयल करो और उसको ग्राइंड कर दो, सूप रेडी, उसमें जो कुछ डालना है बहुत सारी चीज़ें, धीरे धीरे इससे वेट बढ़ेगा, इससे बहुत अच्छे से वेट बढ़ता है। और दूसरा, वेट बढ़ता है केवल खाने या पीने से नहीं, एक्सरसाइज से, गुड एक्सरसाइज, बिना एक्सरसाइज के वेट नहीं बढ़ता है, क्योंकि हमारे मसल्स को क्या चाहिए, गुड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तीन प्रकार की है, एक है दौड़ने वाली एरोबिक्स कार्डियो जिससे वेट घटता है, जिनको घटाना है उनके लिए। दूसरी एक्सरसाइज होती है योगासन वगैरह, वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छी है। अगर वजन बढ़ाना है, जिम, मसल ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइजेस, डंबल ले लो घर पर ही और चालू कर दो, छोटे छोटे 2.5 किलो वाले, 5 किलो वाले पुशअप्स, पुलअप्स, इनसे वेट बढ़ता है। तो गुड एक्सरसाइज अगर हो तो वेट बढ़ेगा। तो एक्सरसाइज एक विधि है वेट बढ़ाने की, और दूसरी है हेल्दी डाइट, ऐसी डाइट में, और दूसरा है नट्स, सारे ड्राई फ्रूट्स जो है उनको भिगो के रखो और फिर उनका ब्लेंड कर दो, उसका क्रीम बनता है, केश्यू क्रीम। और उसके बाद है नट मिल्क्स, काजू का दूध, बादाम का दूध, नारियल का दूध, ये सब दूध बनाओ इनका, इनसे वेट बढ़ जाएगा धीरे धीरे। एक महीना भी ये करो तो अपने आप धीरे धीरे वेट, क्योंकि हमें टू क्विक वेट लॉस नहीं करना है। ये कर दिया तो ये प्राणी की यात्रा नहीं है। यहाँ जो भी करना है सस्टेनेबल हो, धीरे धीरे लंबा लंबा चलना, इस यात्रा में लंबा समय तक हमको चलना है। एक दो दिन छोड़ के करके बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, ये नहीं, जीवन भर लाइफ स्टाइल बनाना है। इसलिए हम कह रहे हैं लिक्विड लाइफ स्टाइल, लिक्विड विद कैलोरीज। सूप लो, स्मूदीज लो, रसा जूसेस लो, ये सबसे धीरे धीरे बढ़ेगा। उसके बाद में ओम शांति, माय नेम इज, नाम नहीं बता रहे हम, ज्ञान में 12 साल से भट्टी फॉलो कर रहे हैं, अभिनव क्रांति के समय से। समहाउ माय रिलेशन विद फूड वाज नॉट गुड, आई एम नेवर एबल टू फाइंड द राइट बैलेंस, कभी बैलेंस फाइंड ही नहीं पाया भोजन के साथ। लॉट ऑफ चेंजेस इन लाइफ, फ्रिज नॉट इन किचन एंड मोस्टली ईटिंग रॉ ओनली, फ्रिज तो रखा ही नहीं है, रॉ भोजन खाते हैं। माई क्वेश्चन इज दैट कि जब मैं दीदियों के साथ होती हूँ और अलौकिक परिवार के साथ होती हूँ, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल इनटेक ऑफ फूड। अकेली जब होती हो तब ठीक है, जब दीदियों के साथ और ब्राह्मण परिवार के साथ होती हूँ तो संस्कार ऑफ एडिक्शन कम बैक, एडिक्शन वाला संस्कार, एंड हाउ सो हाउ टू कंट्रोल। ऑल्सो वेन एवर आई टेक स्पाइसी हैवी फूड आई हैव हार्ट बर्न, एसिडिटी इश्यू, नॉट एबल टू कम्प्लीटली अवॉइड ड्यू टू डीप संस्कार, काइंडली गिव सम टिप्स फॉर सेल्फ कंट्रोल और रिस्ट्रेंड। ये है सब क्रेविंग, इसको कहते हैं क्रेविंग, क्योंकि क्रेविंग बहुत जबरदस्त होती है। क्रेविंग क्यों होती है पहले उसके ट्रिगर्स ढूंढने पड़ेंगे। और इसमें भी अगर हमको इस यात्रा को सस्टेनेबल करना है तो सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है लिक्विड विद कैलोरीज। जो भी लो लिक्विड रूप में लो, उसकी क्रेविंग नहीं होती। जैसे गुलाब जामुन है, उसको खाया तो वापस खाने की इच्छा होगी, पर उसको ही अगर ब्लेंड कर दो और उसमें पानी डाल दो और वो जूस बन जाए और वो पिया, उसकी इतनी क्रेविंग नहीं होगी। उसका पहले तो चेंज हो जाएगा सब ट्रैक्ट, वो दिखने भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई माइंड है। पर हमें काम करना है अपनी क्रेविंग्स के साथ। क्रेविंग्स कब जागती है, क्या खाने की इच्छा होती है। जैसे अगर मैं यहाँ बैठे बैठे कोई इटालियन डिश का नाम ले लूँ जिसको आपने कभी देखा भी नहीं, खाया नहीं, तो कुछ होगा नहीं। पर यदि मैं कहूँ आलू के पराठे आज नाश्ते में है, तो इसके साथ क्या जुड़ गया हमारा, हमारी याद, अभी तक खाई हुई सारे कब कब कहाँ कहाँ खाए थे और किस किस ने खिलाए थे, वो सारी यादें जुड़ी हुई है। तुरंत सोचेंगे कब ये पूरा होगा क्लास और कब चले जाए, बस वो ही चाहिए आज, तो उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए आज। कहाँ से कहाँ जुड़ जाता है, रास्ते से जा रहे एक सुगंध आ गई मिठाई की दुकान से, बस ये सुगंध से बचपन की यादें जुड़ी हुई है, फिर वही चाहिए। आज कहा ना मुरली मिठाइयाँ बांटो, सुबह की मुरली में है। तो क्रेविंग्स कहाँ से आती है और कितने डीपली हम जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से, इसको समझना है। और ये सारी क्रेविंग्स को खटाने का एक पावरफुल टूल है लिक्विड्स, लिक्विड विद कैलोरीज, लिक्विड लाइफस्टाइल, लिक्विडिटी में प्रवेश, उससे क्रेविंग इतनी नहीं होगी जितनी उससे होती है। यहाँ तक कि सॉल्टी सूप अगर लिया जाए, ठीक है, और एक है रॉ डाइट लिया जाए, बहुत सारा सलाद और बहुत सारा कुछ डाल दिया, उसमें डाइजेशन इन्वॉल्व है, इसमें थोड़ा सा ले लिया बस, उसके बाद में शायद क्रेविंग भी नहीं होगी, पर इसमें हो सकती है, बाकी रॉ में बहुत कम होती है। जिन्होंने अनुभव किया होगा, हम खुद कितने सालों तक रॉ पर थे, इसलिए हमें इसका अनुभव है। भूख जैसे है ही नहीं, बस खा इसलिए रहे क्योंकि खाना है, शरीर को जीवित रखना है, इसलिए यह भी बहुत पावरफुल टूल है। पर सबसे पावरफुल टूल है लिक्विड्स। चार चीज़ें बनी हुई है, रोटी भी है, सब्जी भी है, दाल ले लो, वो लिक्विड है। अभी हमारा क्राइटेरिया यहाँ से चेंज करना है, सॉलिड लिक्विड। ये क्राइटेरिया भूल जाओ, ये कुक्ड है कि अनकुक्ड है, ये अनाज है कि अनाज नहीं है, क्राइटेरिया कौन सा कर दो, लिक्विड। और इसका एक एक्सपेरिमेंट करके देखो अगले 20 दिन तक, फिर आगे हम देखेंगे। तो ये जो बहन जी कह रहे हैं कि ये संस्कार है एडिक्शन का, ये कहाँ से चल के आ जाएगा पता ही नहीं चलता है, और गिरा देगा हमको। काम हम बहुत गहरे तल पर कर रहे हैं, केवल भोजन पर काम कर ही नहीं रहे, ये काम तो संस्कारों के तल पर चल रहा है। और जैसे कोई एक आसक्ति छूट जाएगी तो उससे जुड़ा हुआ विकार भी छूट जाएगा, उसके साथ जुड़ा हुआ मांगने का संस्कार खत्म हो जाएगा, उसके साथ जुड़ा हुआ थाली लेकर गए पहली बार लिया फिर बहुत पसंद आ गया वापस गए सामने वाले ने दिया नहीं तो उसके प्रति कैसी भावनाएं जागती है, उसकी नियति नहीं है देने की वापस, हमको चाहिए पर वो देना नहीं चाहता, उसके चेहरे से ही पता चल जाता है कि ये देना नहीं चाहता, पहले से ही हमारे सामने किसी दूसरे को डांटा है उसने, अभी तो दिया तो वापस क्यों आ गए, सोचते ये माता से तो दूर ही रहना चाहिए, कोई दूसरी देखते अच्छी वाली। कितने भाव चेंज हो गए हमारे, पर हमारे अंदर है कि हमें वो चाहिए नहीं चीज, तो हम जाएंगे ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये संस्कारों पर काम करना है। उसके बाद में आयु 28, कोई बीमारी नहीं, कोई दवाई चल रही है नहीं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, माय मेडिकल है जनवरी में, आफ्टर मेडिकल आई वांट टू बिकम फ्रूट एरियन, मेडिकल के बाद मुझे क्या बनना है, फ्रूट एरियन बनना है, अर्थात केवल फल। ये इतना टेम्पटेशन होता है लोगों को कि मुझे तो बस अब ये सब छोड़ के ना, ओपीडी में लोग आते हैं, हम सोच रहे ये सब हटा दे, ये सब गड़बड़ हो रही है ना रिपोर्ट, सीधा फल पर रहेंगे, पर इतना आसान है क्या ये, एक दिन भी रह के दिखाओ फल पर, शाम को ऐसी क्रेविंग हो जाएगी कि सब हटाओ सब कुछ, कुछ भी कर सकता है आदमी भूख के लिए, कुछ भी, भूख ऐसी चीज है कि रात को 12 बजे भी उठ के किचन में जाके फटाफट सब ढूंढेगा और खाएगा, खिचड़ी खुद बना के खाएगा, कुछ भी करेगा, या किसी का चोरी भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है, डिपार्टमेंट में जाएगा बोलेगा कहाँ है, वो किसी बहन को देना है इसलिए यात्रा भोजन चाहिए, चाहिए खुद के लिए। भूख ऐसी चीज है, झूठ चोरी कुछ भी करा सकती है व्यक्ति से, क्योंकि शरीर की सवाल है वो, इसीलिए फ्रूटेरियन बनना है। और सबसे पहला हम यहाँ फ्रूटानित बनने की एडवाइस नहीं दे रहे इस यात्रा में, क्योंकि फ्रूटेरियन पर चले जाओ और बन भी जाओ तो 7 दिन में बहुत ड्रास्टिक वेट लॉस होता है, जिस वेट को हमने इतना समय से कमाया वो तुरंत चला गया, ये कोई बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं। और दूसरी बात, जब आप फ्रूट से वापस अपने नेचुरल भोजन पे आओगे तुरंत नहीं आ सकते, बहुत टाइम लगता है, कोई 20 दिन अगर उपवास करे और उसको कोई 21वें दिन अगर वो भोजन कर ले तो डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उपवास को तोड़ने की विधि होती है उससे आधा टाइम लगाओ अपने नेचुरल भोजन पे आने के लिए। 15 दिन अगर उपवास किया है तो फिर 5 दिन थोड़ा सा जूसेस पे आओ, फिर धीरे धीरे वेजिटेबल्स पर आओ, फिर नेचुरल कुक्ड पर आना होता है, आधा टाइम लगता है। और वो जो वेट लॉस हो गया है वो एक निगेटिव मेमोरी क्रिएट करता है कि जैसे ही मैं फ्रूट पर जाता हूँ वेट लॉस हो गया, अगली बार से कभी नहीं जाएगा वो व्यक्ति, क्योंकि जब 15 किलो वेट लॉस हो गया था तो सारी दुनिया दुश्मन बन गई थी, लोग कहने लगे तेरे क्या हो गया, टीबी तो नहीं हो गया तुमको, क्या हो गया तुम, जांच कर लो अपनी, ये क्या कर रहे हो, घास फूस खाते हो। तो भय एक निगेटिव संस्कार, अगली बार से ये व्यक्ति फिर कभी कुछ नहीं करता है। इसलिए वेट लॉस चाहे ज्यादा भी हो वेट तो भी ड्रास्टिक वेट लॉस ना हो, स्लो डिटॉक्स की ये विधि है, सस्टेनेबल होनी चाहिए, लंबा समय होनी चाहिए, और उसकी सबसे बेस्ट विधि है लिक्विड विद कैलोरीज, केवल लिक्विड नहीं, केवल रसाहार नहीं। तो ये जो इनका जो संकल्प है वैसे अच्छा है, परंतु ये नहीं करना है, केवल रसाहार पर नहीं जाना है, क्योंकि हमको लंबा समय चलाना है। हाँ, कोई बीमारी है तो कहीं जाकर कोई नेचुरोपैथ वगैरह है उनके गाइडेंस में करे तो अलग बात है, पर यहाँ तो हम प्राणी की यात्रा उन लोगों के लिए नहीं है, ये पहले से जो स्वस्थ है और जिनको अध्यात्म में आगे जाना है उनकी बातें चल रही है। उसके बाद में और दो प्रश्न है ये। ओम शांति भाई जी, मैंने दो बार रॉ फूड एक बार भोजन करती हूँ, डायबिटीज है, इंसुलिन लेती हूँ, दवाई कैसे बंद होगी? दो दिन नहीं ली तो शुगर बढ़ जाती है, पैरों में सेंसेशन आने लगते हैं, क्या करें? बाबा का ज्ञान पूरा फॉलो करते हैं। तो जैसे जैसे इस यात्रा पर जाओगे, एक तो सबसे पहले सेल्फ मॉनिटरिंग, खुद अपने पास ग्लूकोमीटर रखो, अपनी शुगर मॉनिटर करते रहो, और जैसे ही डाइट परिवर्तन होगा शुगर डाउन जाने लगेगी, तो धीरे धीरे इंसुलिन का डोज कम करना पड़ेगा, दो दो यूनिट से या टैबलेट्स जो चल रही है अपने डॉक्टर से मिलो और थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ। पर हाँ, इस यात्रा में लंबा समय अगर चलना है तो धीरे 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 धीरे, एकदम जोश में आके कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। और जैसे एक भाई है, वो ऑर्थोपेडिशियन है और वो इस प्राणी की यात्रा पर है, तो उन्होंने अभी भी जिम ज्वाइन की, तो जिम जाने के बाद जो जिम ट्रेनर है उनसे पूछा कि मैं लिक्विड डाइट पर हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? और वो जो जिम का ट्रेनर था उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि तू आप जो है ना बहुत हैवी वाली एक्सरसाइज नहीं करो, लाइट एक्सरसाइज करो, रेपिटेशंस को बढ़ाओ। इट्स अ गुड एडवाइस, नहीं तो जिम वाले ऐसी एडवाइस कभी नहीं करते। जिम वाले तो पहले ही करते, तुमको जिम आने से पहले एक प्रोटीन पाउडर तुम्हारा चाहिए, पहले वो पी के आओ, फिर जिम जाने के बाद ये करना, ये करो, वो करो, हजार चीज़ें बताते। ये थोड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति है जिसने कहा कि तुम लाइट वाला करो। तो ऐसे यहाँ पर भी ऐसे किसी डॉक्टर से मिल सकते हैं जो इस यात्रा के बारे में जानते हैं, जिन्हें रॉ फूड का एक्सपीरियंस है, जिन्हें जूसेस का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने डिटॉक्स प्रोसीजर खुद की है, क्लेंजिंग का एक्सपीरियंस है, उनसे पूछा जा सकता है। और दवाई बंद हो ये लक्ष्य नहीं रखना है, धीरे 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 प्राण ऊर्जा से कनेक्ट होना है, समान का अभ्यास करना है, मेडिटेशन को बढ़ाना है, धीरे धीरे वो बीमारी खुद ही चली जाएगी, पर लंबा टाइम लगेगा इसमें। ये दूसरा प्रश्न भी वैसा ही है कि शुगर लो होने लगा है, कभी 60 हो जाता है, क्रेविंग होती है, कुक्ड कब क्या लेना है, कुक्ड कब लेना है, रॉ कब लेना है, सॉलिड कब लेना है, लिक्विड कब लेना है, ये खुद अपना प्रोग्राम बनाओ, खुद मालिक है, खुद ट्राई करके देखो। रोज सॉलिड लेते आज लिक्विड लेके देखो, रोज दोपहर में रोटी लेते, दाल लेते, सब्जी लेते, सब कुछ लेते, आज केवल दाल लेके देखो क्या होता है। कल रोज अनाज लेते हैं, आज अनाज छोड़कर देखो क्या होता है। एक दिन अलग अलग फीलिंग्स आएगी और उसी दिन देखोगे विचार बदल रहे, संस्कार बदल रहे, इमोशंस बदल रहे, हम अपने भोजन से कनेक्टेड है, तो ये सब चीज़ें होती जाएगी। उसके बाद में एक प्रश्न और ले लेते हैं। पिछले 20 सालों से हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती, जब से बाबा के बने हैं शरीर चल रहा है, कोई रोग नहीं है। प्रश्न है पानी पर या खाने नहीं खाने से कितना दिन रह सकते हैं? ये लेवल 4 ब्रिदारियन की बात कर रहे हैं। तो वैसे तो मेडिकल साइंस कहता है स्टार्वेशन में बॉडी जाती है, किटोसिस होता है, वेट लॉस होता है और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, हॉस्पिटल में लैंड अप हो जाएंगे और फिर उसके बाद में डेथ भी हो सकती है अगर व्यक्ति भोजन पानी छोड़ दे तो। ये मेडिकल का सिद्धांत है एंड दैट इज राइट, पर हम यहाँ बात कुछ और की कर रहे हैं, यह है प्राणिक लिविंग की बात। यहाँ व्यक्ति अपने शरीर को स्लोली अडॉप्ट करता है, धीरे 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 धीरे, और ऐसे इतिहास में ढेर सारे उदाहरण हैं इन लोगों के जो इस तरह से लेवल 4 वाले थे। जो लेटेस्ट उदाहरण है जिन्होंने अभी अभी शरीर छोड़ा, प्रहलाद जानी 70 ईयर्स न खाना न पीना, उनको माता जी कहते थे, लोगों ने उनको देवता बना दिया, अभी अभी शरीर छोड़ा, नीचे अंबा जी के पास थे वो। प्रहलाद जानी जिस पर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए, स्टर्लिंग हॉस्पिटल में उनको रखा गया था, उनकी दिन में 2 बार सोनोग्राफी की जाती थी, सारे ब्लड टेस्ट होते थे, सीसीटीवी कैमरा लगा के रख दिए थे पूरे और देखते थे, तो उनके शरीर में यूरिन अपने आप बनता था और अपने आप वो एब्जॉर्ब हो जाता था। नो फूड नो वाटर, ये एक बड़ा उदाहरण है। दूसरे बहुत सारे उदाहरण हैं, ढेर सारे, बाल योगिनी सरस्वती, बारबरा मोर, ये पैदल दौड़ती थी एक स्त्री विदेश की, ना खाती थी ना पीती थी और उसमें ऊर्जा रहती थी, वो कहती थी आई एम रिसीविंग लाइट, वो हम प्राणा से जी रही हूँ, प्राण ऊर्जा से। उसके शरीर को उसकी जरूरत, क्योंकि ये लोगों ने अपने शरीर को धीरे 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 कुक्ड से अनकुक्ड पे आए, वीगन पर आए, फिर लिक्विड्स पर आए, लिक्विड्स पर लंबा समय चले, फिर कभी लेते थे कभी नहीं लेते, धीरे 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 सब छोड़ दिया और शरीर फिर भी चलने लगा। इसको कहते हैं स्लो एडेप्टेशन, जैसे ओपीडी में हमारे पास पेशेंट आते एक हीमोग्लोबिन के साथ, गरीब ग्रासी या लोग आते आदिवासी दो हीमोग्लोबिन के साथ, हम तो सोच भी नहीं सकते ये लोग जिंदा कैसे है। उनको पूछते कोई तकलीफ होती कुछ नहीं, ये रिश्ते ये लेके आया थोड़ी कमजोरी लगती है बस, दो हीमोग्लोबिन, शरीर अडॉप्ट हो गया। लोग आते हैं 230 ब्लड प्रेशर और 150, कैसे शरीर अडॉप्ट कर लेता है और फिर एकदम कॉम्प्लिकेशन। उसी तरह ये भी शरीर अडॉप्ट करता है धीरे 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 धीरे, कम खाने को भी अडॉप्ट करते जाता है और फिर वो लेवल 4 अपने आप आ जाती है। बार बार अमोर है, फिर गिरिबाला है, इसका तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। उसके वो बचपन से इतना खाती थी बचपन में 13 साल की उम्र में शादी हो गई, उसकी सास जो थी उसको बहुत डांटती थी, जब दिन रात ये खाती रहती है। उसने अपने सास के सामने प्रतिज्ञा की आज से बाद भोजन को हाथ ही नहीं लगाऊंगी, चली गई घर छोड़कर। उसको गुरु मिला, गुरु ने कोई मंत्र दिया, उसके बाद कभी खाना ही नहीं खाया ना पिया। कितना 40-50 साल तक वो नो फूड नो वाटर में रही और एकदम साधारण गांव की महिला अपने घर के सारे काम करती थी। इसका पूरा वर्णन दिया हुआ है गिरिबाला हीरा रतन मनेक HRM। इन्होंने भी अभी अभी शरीर छोड़ा, HRM 411 दिन स्टर्लिंग हॉस्पिटल में थे, उन पर भी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, अभी अभी की बात है ये तो। फिर विदेश में भी 211 दिन थे केवल पानी पर, थोड़ा सा पहले वेट लॉस हुआ बाद में स्टेबल हुआ, और उनकी भी सोनोग्राफी USG सब होता था, सब स्टेबल। जोईचिम, उसके बाद में कमिला, उसके बाद में राबिन मार्था, प्रहलाद जानी, सूर्य उमा शंकर योगी, थेरेसा न्यूमैन विदेश की लेडी थी, छोटा सा इतना लेती थी वो, एक छोटा सा कॉइन जैसा वेफर कॉन्सेक्रेटेड जिसको यूक्रिस्ट कहते हैं, जो क्राइस्ट को अर्पित किया गया, और उसके शरीर पर निशान पड़ते थे दाग, जैसे जीजस क्राइस्ट के शरीर पर पड़ते थे वैसे थेरेसा न्यूमैन। वो बस उतना ही उसका भोजन था, उसका शरीर उसी से ठीक था, एडॉप्ट कर लिया उसने। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण संसार, वाइले ब्रूक्स है, कितने सारे हैं, जसमोहीन है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो लेवल 4 पर है। हमारा लक्ष्य लेवल 4 नहीं है, हमारा लक्ष्य है लेवल 3। लेवल 3 अर्थात अधिक से अधिक लिक्विड्स और हो सके तो कभी कभी सॉलिड। और एक सबसे बेस्ट प्लान है हर महीना 21 दिन लिक्विड्स और जो बचे हुए 7 दिन है उसमें सॉलिड भी एंजॉय करो। एक सॉलिड की दुनिया, एक लिक्विड की दुनिया है, दोनों एंजॉय करना है। कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। लिक्विड खाना जरूरी है, सॉलिड खाना जरूरी है, किस लिए? सफरिंग अनुभव करने के लिए। खाओ और देखो कैसा दुख होता है, ताकि ये मेरे हमारे कहने से नहीं होगा। खुद लिक्विड्स लो एक दिन, अगले दिन सॉलिड लो पूरा भरपेट, इतना खाओ कि बात मत पूछो, पूरा सुबह भी ठूस ठूस के, दोपहर में भी, रात को, और फिर देखना योग की क्या अवस्था है। खुद ही खुद के टीचर बनोगे और खुद ही धीरे धीरे अनुभव करना है। तो आज कुछ प्रश्न लिए, कल और प्रश्न होंगे, बस आगे बढ़ते जाना है इस यात्रा में। तन तूफानी है लेकिन हस्ती अमृत की खान, साधना में पी ले इसके प्याले, साधना साधन जो ब्रह्म ज्ञान, नहीं नन्ही सी हो आशा नवयुग के अरमान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें सिंह की हो संतान तुम, एक उफान भर तू पार कर ले हर मुश्किलों का समंदर। ओम शांति। अमृत की खान, साधना में पी ले इसके प्याले, साधन जो ब्रह्म ज्ञान, नहीं नन्ही सी हो आशा नवयुग के अरमान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें सिंह की हो संतान तुम।
अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है, छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है।
नहीं बहाने कोई उलाहने पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम।
अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है। छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। नहीं बहाने कोई उलाहने पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, हो संतान तुम।
एक उफान भर, एक उफान भर,
हर मुश्किलों का समंदर।